जल प्रदूषण का मानव जीवन, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं धातुओं पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रदूषण से मानव जीव जंतु एवं वनस्पति आदि का धीरे धीरे क्षय होता रहता है। मानव स्वास्थ्य के लिए जो प्रदूषित धारा है, इस प्रदूषित धारा में जो पैथोजेनिक पाया जाता है, जो कि घरेलू सीवेज में होते हैं और जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जैसे भारी धातुएं, अम्लीय घोल, साइनाइड युक्त जल, ये सब बहुत नुकसानदेह हैं। जन स्वास्थ्य को केवल पानी सीधे उपयोग से ही हानि नहीं होती है, वरन प्रदूषित जल में पाई जाने वाली जो मछलियों एवं अन्य जीवों से भी हानि होती है। इनके उपयोग से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। दूषित जल से फलदार वृक्षों या पौधों की सिंचाई हेतु प्रयोग करने पर दूषित पदार्थों को कुछ मात्रा फलों एवं फूलों में भी आ जाती है, जिनके सेवन से भी मनुष्य को बीमारियां लगने की संभावना है। पेड़ पौधों को प्रदूषित जल मिलने से उनकी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया रुक जाती है, जिससे वृक्षों का विकास रुक जाता है। साथ साथ पशुओं द्वारा नदियों एवं तालाबों को दूषित जल ग्रहण करने पर शिशु बीमार हो जाते हैं। उनके द्वारा इस प्रदूषित जल से पनपे घास, चरी आदि को खाने से उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित जल संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। इस्पात की सामग्री जैसे जहाज पर रंग लगाना, पाइप पंप आदि पर जंग लगना, लकड़ी की संरचनाओं का सड़ जाना, सीमेंट कंक्रीट की संरचनाओं का धीरे धीरे क्षरण होता जाना, ईंट की बनी संरचनाओं का क्षय होना आदि सब प्रदूषित जल के ही कुप्रभाव हम देख रहे हैं। क्योंकि प्रदूषित जल के सेवन से पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य सभी प्रभावित होते हैं, अतः पारिस्थितिकी संतुलन बहुत बिगड़ जाता है और हमारे पर्यावरण पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे वर्षा का समय पर ना होना या गर्मी या सर्दी का होना, ये सब। इसके अतिरिक्त नगर पालिका या उद्योग जिसमें प्राकृतिक पानी का उपयोग हो रहा है, यदि जल प्रदूषित है तो उसके उपचार पर उसका काफी व्यय, बड़ा खर्चा हो जाता है। ऐसे जल से ठोस कुस्वाद, रंग, गंध, कठोरता और अन्य रसायन दूर किए जा सकते हैं। ये बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और हम उसके लिए जो उपाय कर रहे हैं, उपाय घटते जा रहे हैं, उपाय नहीं बढ़ रहे हैं, और अगर उपाय कर भी रहे हैं तो उन उपायों का कोई हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हम देख रहे हैं परेशानियां, समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। चलिए देखते हैं कि जल प्रदूषण की रोकथाम कैसे करें। अगर इसको रोकना हो तो उसके लिए हम क्या विधियां अपनाएं। जैसे सबसे पहले हम करते हैं कि पहले बिंदु पे हमने रखा है वाहित मल का शुद्धिकरण। घरों, कारखानों आदि स्थानों से अपमार्जक पदार्थ, विषैली पदार्थ और जो मल मूत्र इत्यादि के द्वारा नदियों, तालाबों या समुद्रों के जल में मिलने वाले पहले शुद्ध कर लिए जाए ये जल, ताकि ये जल के पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट भ्रष्ट न कर दे। वाहित मल का शुद्धिकरण प्रस्तुति प्रमुखतः दो प्रकार से किया जा सकता है। जैसे पहला आपका आएगा भौतिक और दूसरा आएगा जैविक। भौतिक शुद्धिकरण में हम कई चरण देखते हैं। घरों में भी आपने देखा होगा कि सबसे पहले पानी को छाना जाता है। विशेष प्रकार के छन्नों के द्वारा गंदगी को छान लिया जाता है और इस पद द्वारा मोटी गंदगी छान कर अलग कर ली जाती है। या स्थिरीकरण, अकार्बनिक गंदगी सहित वाहित मल को स्थिर करने पर बैठ जाती है गंदगी। निलंबित या घुलित अवस्था में जो रह जाते हैं, ऑक्सीकरण करके अकार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है उसको। यह क्रिया खनिजीकरण कहलाती है। इस क्रिया के लिए ऑक्सीजन या तो कृत्रिम रूप से वाहित मल के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं अथवा इसके जैविक शुद्धिकरण के द्वारा पूरा किया जाता है। इसके लिए हरे पौधों, विशेषकर शैवालों द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न की जाती है। गंदे जल में ये सभी पदार्थ उपस्थित होते हैं जिनकी आवश्यकता इन शैवालों को ठीक से पनपने के लिए होती है। हाँ, इनके प्रयोग के लिए कुछ जीवाणु इन अपेक्षाकृत जटिल पदार्थों को ऑक्सीकृत करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार शैवालों और जीवाणुओं की सहजीविका पर ही जैविक शुद्धिकरण निर्भर करता है। यह कार्य खुले तालाबों में किया जाता है जिनको ऑक्सीकरण ताल या स्थिरीकरण ताल कहते हैं। दूसरे नंबर पे हम आते हैं कि वाहित मल का विसर्जन। जो गंदे जल हैं या वाहित मल हैं, इनको नदियों में डालना ही पड़े तो उसकी आबादी वाले स्थानों से अलग ले जाकर इसको डालना चाहिए। ऐसी झीलों, तालाबों इत्यादि का जल कभी भी काम में नहीं लाना चाहिए जिसमें इस प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं। उद्योग कारखानों इत्यादि से निष्कासित जल जिसमें रासायनिक पदार्थ इत्यादि होते हैं, इनको भी जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए। जिनका जल किसी काम में नहीं आता और ना ही उसमें मछलियाँ इत्यादि हों, अन्यथा उनके लिए भी हार्मफुल रहेगा। अगली बात पे चलते हैं। स्वतः जल निर्वातकों से निकले धुओं से बचने के लिए रहने के मकान सड़कों से कुछ दूरी पर बनाए जाने का विचार सबसे सही है, क्योंकि इस प्रकार धूल और धुएं से व्यक्ति बचा रहेगा। फिर गोबर, कूड़ा करकट, कंपोस्ट गड्ढों में एकत्रित किया जाना चाहिए, जिससे एक और प्रदूषण की समस्या से बचा जा सकेगा। साथ ही अच्छे प्रकार के खाद भी उत्पन्न उपलब्ध हो सकेंगे। आजकल गोबर से गोबर गैस प्लांट आपने देखा होगा, गैस संयंत्र, इसके द्वारा गैस उत्पन्न की जाती है और इससे बड़े लाभ लिए जा रहे हैं। यह कार्य भी जीवाणु किण्वन के द्वारा ही संभव है। मृत जंतुओं इत्यादि को आबादी से दूर गड्ढों में डालकर मिट्टी से ढक देना चाहिए, ये सबसे अच्छा उपाय है। लास्ट बिंदु आपका आता है, अंतिम पॉइंट, रेडियोधर्मी विकिरण के प्रभाव, इससे बचने के लिए क्या करें? परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। रेडियोधर्मी पदार्थों के विसर्जन के लिए कुछ नई युक्तियां निकाली गई हैं। इनमें इन पदार्थों को निपटने के लिए समुद्र ही सर्वोपयुक्त माना गया है। समुद्र के अंदर गहरी खाइयों में स्टील के ड्रामों के अंदर इन रेडियोधर्मी पदार्थों तथा अन्य विषाक्त पदार्थों को पहुंचाया जा सकता है। भूकंप के झटके से और कीचड़ इत्यादि के एकत्रित होते रहने से यह भाग पृथक के गर्भ में समाता चला जाता है। तो इस तरह से प्रदूषण नियंत्रण हम कर सकते हैं जल का, और जल के प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान, जिसको आप संक्षेप में सिफेरी कहते हैं, CEFERI, इसके यह भी बहुत अच्छे अच्छे उपाय कर रहा है। तो आशा है कि जल प्रदूषण की पूरी बात सुनने के बाद आप भी जल को प्रदूषित होने से रोकेंगे और प्रदूषित जल का इस्तेमाल स्वयं, जीव जंतु या किसी भी प्रकार से जहां ये परेशानी पैदा कर रहा है, कठिनाई पैदा कर रहा है, इसको दूर करने के जो उपाय आपको बताए गए हैं उसको अप्लाई करेंगे और देश और समाज की स्वच्छता में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।